कल रात जो भी हुआ था उसके बाद आशी का मूड उखड़ा हुआ था। अभिमान ने इस बार आशुतोष की भी नहीं सुनी और वो आशी को तलाक देना चाहता था। आशी को लगा था कि आशुतोष की फोर्स करने पर अभिमान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आशी ने आशुतोष को अपनी आखिरी दांव के तौर पर संभाल कर रखा था, लेकिन वो कोई काम नहीं आया। आशी अगली सुबह उठी और उसने अपना मोबाइल चेक किया तो किसी का मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर आशी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। ये पागल हो गई है क्या? जब ये मेरी लाइफ से जा चुकी है तो अब वापस आने की क्या ज़रूरत है? ऊपर से मुझे मिलने के लिए बुला रही है। कहीं इस गलतफहमी में तो नहीं है कि मैं अपनी परफेक्ट लाइफ छोड़कर वापस इनके पास आ जाऊंगी? आशी ने दांत पीसते हुए कहा। उसके पास तृप्ति का मैसेज आया था जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। आशी जल्दी से उठकर बाथरूम में गई और उसने तृप्ति को कॉल मिलाया। तृप्ति का नंबर बन जा रहा था। इसका मतलब साफ था कि उसे तृप्ति से मिलने जाना ही पड़ेगा। तृप्ति ने उसे मिलने का टाइम और लोकेशन भेजी थी और इमरजेंसी सिचुएशन का बोलकर मिलने बुलाया था। लगता है मुसीबतें एक एक करके मेरे पास आ रही हैं। मुझे खुद को स्ट्रांग करना होगा। अगर यही चलता रहा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मुझे फिर से वही पुरानी गरीबी भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए, आशी ने सिर पकड़कर कहा। अचानक उसके जहन में पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई थीं, जब वो अनाथ आश्रम में थी और उस समय लगभग 6 साल की थी। तृप्ति ने लोगों के डर से आशी को अनाथ आश्रम में ही रखा था। वो उससे मिलने आती रहती थी। आशी तृप्ति के वन नाइट स्टैंड का नतीजा थी, इस वजह से उसने आशी को सबसे छुपा रखा था। तृप्ति आशी से मिलने अनाथ आश्रम आई हुई थी। वो उसे समझा रही थी। तृप्ति ने आशी को समझाते हुए उसके बालों को सहलाकर कहा, बेटा अगर तुम इसी तरह जिद करती रहोगी तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। मैं पहले ही तुम्हारे 2 आश्रम शिफ्ट कर चुकी हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। आशी जिन हालातों में पल रही थी उससे वो कम उम्र में ही समझदार हो गई थी। आशी ने तृप्ति का हाथ झटका और गुस्से में बोली, आप जब भी आती हैं यही कहती हैं, लेकिन कभी नहीं लेकर जाती। मैंने किसी से बेवजह झगड़ा नहीं किया था। मुझे भूख लगी थी और वो लोग मेरा खाना छीन रहे थे। मुझे किसी अमीर घर में नहीं रहना है माँ, बस मुझे अपने साथ लेकर चलो। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखती। अगर तुम्हें यहाँ ठीक से खाना नहीं मिलता है तो आई प्रॉमिस मैं एक आदमी के साथ रोज़ तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ भेज दूंगी। पर प्लीज़ मेरी जान, कुछ दिनों के लिए डिसेंट बनकर रहो। आई प्रॉमिस तुम्हें अगले 1 महीने में यहाँ से निकाल लूंगी और बहुत अच्छे घर में भेजूंगी, जहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, तृप्ति ने गंभीर आवाज़ में कहा। वो काफ़ी दिनों से सिंघानिया फैमिली पर नज़र रख रही थी और आशुतोष और काजल की बेटी की जगह अपनी बेटी को देने के लिए प्लानिंग कर रही थी। अगर 1 ही महीने की बात है तो फिर आप मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए अपने साथ रख लीजिए, उसके बाद कहीं भेज दीजिएगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, आशी ने जिद करते हुए कहा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। इस जगह के लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनो विहा, मैं जानती हूँ ये जगह तुम्हारे लिए किसी नरक से कम नहीं है, पर आशुतोष सिंघानिया इसी जगह पर डोनेशन करता है। थोड़े दिन की बात है, एडजस्ट करो, इस बार तृप्ति ने सख्त शब्दों में कहा। आशुतोष सिंघानिया का नाम विहा के सामने पहली बार आया था। उसने हैरानी से पूछा, ये आशुतोष सिंघानिया कौन है? ये वो इंसान है जो फ्यूचर में तुम्हारे डैड बनने वाले हैं। अगर तुम अच्छी बच्ची बनकर रहोगी तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, तृप्ति ने उसे समझाया। आप झूठ बोल रही हैं, बड़े बच्चों को कोई अडॉप्ट नहीं करता है। जब भी कोई कपल अडॉप्शन के लिए आता है उन्हें बेबीज चाहिए होते हैं, फिर वो मुझे क्यों अडॉप्ट करेंगे? विहा बोली। पहले भी जब कोई कपल बच्चा गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम में आता था तब विहा तैयार होकर उन्हें सामने जाती थी, लेकिन वो हमेशा छोटे बच्चों को गोद ले जाते थे। सब कुछ देखने परखने के बाद विहा को तृप्ति की बातें झूठ लग रही थीं, क्योंकि उसकी बेटी लगभग तुम्हारी उम्र की ही है। मैंने तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियों को यहाँ से हटा दिया है। देखो बेटा, मैं बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही हूँ, अगर तुम्हें अच्छी लाइफ चाहिए तो मेरी बात माननी ही होगी, तृप्ति ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर कहा। ठीक है, अगर वो मेरे नए डैड होंगे तो फिर आप क्या हमारे साथ रहेंगी? मुझे आपके पास भी रहना है, विहा मासूमियत से बोली। तृप्ति की नज़रें झुक गई थीं। आशुतोष और काजल उससे नफरत करते थे। ऊपर से जो वो करने का सोच रही थी उसके बाद अगर उन्हें गलती से भी आशी के तृप्ति की बेटी होने का सच पता चल जाता तो वो शायद तृप्ति की गलतियों की सज़ा उन्हें देते। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी और तुम्हें मुझे भूलना होगा। प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ विहा, और हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें परफेक्ट लाइफ देने के लिए मैं बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही हूँ बेटा, तो तुम्हें भी मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा, तृप्ति ने खुद को सख्त करके कहा। उसकी बात सुनकर विहा रोने लगी थी। तृप्ति जो कर रही थी उस दिन दिल तो उसका भी दुख रहा था, पर उसने खुद को मजबूत रखा। उस दिन तृप्ति ने विहा को आखिरी बार जी भरकर देखा था और जाने से पहले उसे जी भरकर प्यार किया था। उस घटना को पूरे 17 साल बीत चुके थे। इन 17 सालों में तृप्ति ने पहली बार आशी को मिलने के लिए बुलाया था। तृप्ति के समझाने के बाद आशी भी उसे भूल चुकी थी और उसने अपनी नई फैमिली के साथ पूरी तरह एडजस्ट कर लिया था। आशी को भले ही तृप्ति के बारे में कोई खबर ना हो, लेकिन तृप्ति की नज़र आशी पर बनी रहती थी। वो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर उससे फ्रेंड बनकर बात करती थी। ना जाने उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला होगा, आशी ने सिर पकड़कर कहा वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। दरवाजे के बाहर आशुतोष खड़े हुए थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आशी कमरे के बाहर आओ, ऐसे कब तक खुद को रूम में बंद करके रखोगी? तुम्हारे लिए मैंने अभिमान से बात की है, अब वो नहीं मान रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आशी जल्दी से बाहर आई। उसने आशुतोष से कहा, अभिमान की नहीं चलने वाली है डैड, उसकी मॉम और उसकी फैमिली भी हैं, आप जाकर उनसे बात कीजिए। वैसे भी मैंने सुना है कि उसके डैड आजकल घर पर आए हुए हैं। सिद्धांत ने मैसेज करके आशी को इस बारे में बता दिया था। वहीं आशुतोष ने आशी को शांत करने के लिए कहा, ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ, पर कम से कम तुम बाहर तो आओ। आशुतोष को डर था कि अपनी परेशानी में आशी कोई गलत हरकत ना कर दे। उनके समझाने पर आशी बाहर आ गई थी। तृप्ति के मैसेज के बाद आशी काफी परेशान लग रही थी, तो उसका परेशान चेहरा देखकर आशुतोष को लगा कि वो अभिमान की वजह से उदास है। डोंट वरी, मेरी बेटी को उसके बाद के होते हुए उसकी सारी खुशियां मिलेंगी, आशुतोष ने आशी को सीने से लगाकर प्यार से सहलाया। आशी ने उनकी बात पर हाँ में हाँ भरी। उसका बस चलता तो वो तृप्ति से मिलना टाल देती, लेकिन जिस तरह से तृप्ति इतने सालों बाद वापस मैसेज करके उससे मिलना चाहती थी तो जरूर बात जरूरी थी। बस यही सोचकर आशी ने तृप्ति से मिलने का सोचा। दूसरी तरफ आशिका घर पर अकेले काम कर रही थी। जब से उसे तृप्ति और स्काई के मुंबई आने का पता चला था, उसने खुद को पूरी तरह घर के अंदर कैद कर लिया था। हालांकि अभिमान ने उसकी पूरी सिक्योरिटी लगवाई थी, फिर भी आशिका को डर था कि गलती से भी वो उनसे ना टकरा जाए। काम से कुछ देर फ्री होकर आशिका ने अपना मोबाइल लिया, तभी उसने देखा कि सब तरफ डॉक्टर मर्चेंट के एक्सीडेंट की न्यूज आ रही थी।
अरे नहीं, इशिका का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मुझे बारे में पता क्यों नहीं चला? मुझे मिस्टर राजवंश से इस बारे में बात करनी चाहिए। आई होप इशिका ठीक हो। आशिका वो न्यूज देखकर परेशान हो गई थी और उसने तुरंत अभिमन्यु को कॉल किया। अभिमन्यु इस वक्त ऐसी हालत में नहीं था कि वो आशिका का कॉल रिसीव कर सके। उसके कॉल रिसीव ना करने पर आशिका को और टेंशन होने लग गई। पूरी दुनिया में सिर्फ इशिका और रेहान ही थे जो उसे अपने लगते थे। मुझे कुछ भी करके इशिका से मिलने जाना होगा, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आशिका जल्दी से उठकर बाहर जाने लगी। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उसे तृप्ति और स्काई की याद आ गई थी। आशिका ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने खुद से कहा, अगर गलती से भी वो मेरे सामने आ गई तो मैं क्या करूंगी? स्काई को उस दिन धोखा देना आसान था, लेकिन मिस हिल को नहीं। वो लोग जरूर मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। पर इशिका से भी मिलना जरूरी है, मुझे रिस्क लेना ही होगा। आशिका जल्दी से अपने बेडरूम में गई। उसने खुद को छुपाने के लिए मास्क और लेंसेज लगा लिए थे। तैयार होते हुए अचानक आशिका को याद आया कि जब वो पहली बार राजवंश एम्पायर में पहुंची थी, तब रचित और अभिमान ने उसे लड़का समझ लिया था। आशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। आशिका ने जल्दी से वही कपड़े वापस पहन लिए थे और बालों को छुपाने के लिए ऐसी ही कैप लगा ली थी। उसने खुद को आईने में देखा तो सच में वो बिल्कुल किसी लड़के की तरह लग रही थी। उसके इस लुक के बाद कोई उसे नहीं पहचान सकता था। आशिका तुरंत वहां से इशिका से मिलने के लिए निकल गई थी, तो वहीं अस्पताल के अंदर अभिमान अभिमन्यु के पास बैठा हुआ था। अभिमान को भी कहीं न कहीं इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से अभिमन्यु इशिका के पास नहीं रुक पाया। चाचू आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आज इशिका हॉस्पिटल में है। मुझे इस तरह आपको अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था, जबकि उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत थी, अभिमान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। गलती मेरी भी है, जब भी उसे मेरी जरूरत होती है मैं उसके पास नहीं रुक पाता। शायद मुझे उसकी हिडन आइडेंटिटी को सबके सामने लाना ही नहीं चाहिए था, इसी वजह से उसके ऊपर मुश्किलें आ रही हैं, अभिमन्यु ने परेशान स्वर में कहा। इशिका की तरफ से डॉक्टर ने अभी कोई कन्फर्म रिपोर्ट नहीं दी थी, वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अभिमान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डोंट वरी चाचू, इशिका ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा ना कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है, उम्मीद तो यही है, अभिमन्यु ने बोला। अभिमन्यु अभी भी आईसीयू के आगे वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था और अभिमान उसके साथ था। इस बीच आशिका वहां पहुंची। उसने अभिमान को अभिमन्यु के साथ देखा तो वो जल्दी से एक दीवार के पीछे छुप गई थी। किसी और का पता नहीं, लेकिन मिस्टर राजवंश ने मुझे इस तरह इन कपड़ों में देखा तो वो मुझे जरूर पहचान जाएंगे। उस दिन भी मैं यही कपड़े पहने हुए थी, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इन दोनों का सरनेम राजवंश है तो क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? आशिका ने मन ही मन कहा। आशिका ने वहां रुककर इंतजार करने का सोचा, क्योंकि वो इतनी दूर खतरा उठाकर आई थी तो उसे इशिका से मिलना ही था। वैसे भी अभिमान ज्यादा देर तक वहां नहीं रहने वाला था। राधिका और केशव ब्रेकफास्ट के लिए अस्पताल के कैंटीन एरिया में थे। वो वापस अभिमन्यु के पास लौट गए थे। अंदर डॉक्टर इशिका का चेकअप कर रहे थे। वो बाहर निकले तो उन्हें देखते ही वो चारों उठकर उनके पास चले गए। आपने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी? बाहर आते ही डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा। इशिका के इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद वो सच में इशिका की प्रेगनेंसी के बारे में भूल चुके थे। डॉक्टर की याद दिलाने पर उन सबको इशिका की प्रेगनेंसी का ख्याल आया। वी आर रियली सॉरी डॉक्टर, इस तरफ से हमारा ध्यान बिल्कुल हट गया था। ऊपर से इशिका की ये हालत देखकर मुझे कुछ और ख्याल ही नहीं रहा। डॉक्टर मेरा बच्चा तो ठीक है ना? अभिमन्यु ने घबराई आवाज में कहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि पिछली बार भी इशिका ने अपने बच्चों को खो दिया था।
इस बार अभिमन्यु और इशिका अपने बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न थे। ऊपर से उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इशिका के एक्सीडेंट के बाद अभिमन्यु एक और बुरी न्यूज के लिए तैयार नहीं था।